एक जो और मुख्य बात हमको इस क्लास में कहनी है वो है ईश्वरीय मर्यादाएं। कुमारों के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं क्या क्या है सभी सुनाएंगे। आपको कितनी मर्यादाएं पता है वो सुनाओ, उसका फिर हम विस्तार करेंगे। मर्यादाएं अर्थात नियम, नियम अर्थात रूल्स, श्रीमत। क्या क्या श्रीमत है? सुबह से लेकर तो रात तक, अमृत वेले से लेकर तो रात तक, कुमार जीवन या कुमारी जीवन या ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन में क्या क्या मर्यादाएं हैं? कौन कौन बताएगा? कोई भी बताओ, कहीं से भी। अमृत वेला मिस नहीं करना, एक। और सुबह की मुरली मिस नहीं करना, पर व्हाट्सएप पे तो आ जाती है फिर। अच्छा, तो जाना है, जाना चाहिए, जाना चाहिए। और समय पर पहुंचना है, और नुमा शाम का योग, और ट्रैफिक कंट्रोल, और शुद्ध अन्न, और देवी गुणों की धारणा। थोड़ा पावरफुल बताओ। ब्रह्मचर्य, और बहने बैठी है सेंटर पर कांटेक्ट केवल बड़ी बहन से रखना है, छोटी बहनों से नहीं। यदि सेवा अर्थ बात करना पड़े तो चलेगा। मुरली बाबा सुनाते हैं, एक साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा है, कई बच्चे कहते हैं कि ये बहन बहुत अच्छी है, ये बहन बहुत मीठी है, ये बहन बहुत मीठी मुरली सुनाती है। बाप कहते हैं, अरे बहन मुरली नहीं सुनाती, बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। आकर्षण, देह का आकर्षण, देह से होने वाले विकर्म, दैहिक दृष्टि, और पीछे से पर्सनल कांटेक्ट कम से कम हो। जो कांटेक्ट हो वो सेवा का कांटेक्ट हो। अगर पर्सनल कांटेक्ट है तो उसमें माया कभी भी आ सकती है। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स हैव अ टेंडेंसी टू टर्न इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। इस बात को कभी भूलना नहीं। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स हैव अ टेंडेंसी टू टर्न इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। इसके लिए इसका ध्यान रखना है। और हरेक को आत्मिक दृष्टि देखना। नियम बताओ, नियम जो कहते हैं ना, नियम कुछ और होता है। एक है श्रीमत, हम अभी शुरुआत से चालू करते हैं, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक क्या क्या करना है उसकी मर्यादाएं, केवल नियम नहीं मर्यादाएं। मर्यादा बहुत ऊंचा शब्द है। कोड ऑफ कंडक्ट इंग्लिश में कहते हैं, लाइन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। मर्यादाओं की लकीर का उल्लंघन नहीं करना, नॉट टू वायलेट द लाइन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। वो कौन कौन सी मर्यादाएं हैं? नहीं, दुख नहीं देना वो अलग प्रकार की है, वो श्रीमत है। हम यहां अभी थोड़ा विभाजन कर रहे हैं। श्रीमत अलग, श्रीमत तो बहुत बड़ी है, श्रीमत की लिस्ट तो बहुत। हम श्रीमत की बात थोड़ी कम करेंगे, हम मर्यादाएं, नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उसकी बात करेंगे। हम चालू कर रहे हैं अमृत वेले से, पैसा बाद में, बीच में, दोपहर में, दिन में, ठीक है। सबसे पहले अमृत वेले से भी पहले उठे और आंख खुली, वहां से चालू करो। इस सीजन में, इस सीजन नहीं, अभी एक साल हो गया शायद, एक साल पहले जो साकार मुरली चली थी 18 जनवरी की साकार मुरली, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ उठते ही बहुत भपके से बाप को क्या कहो, गुड मॉर्निंग बाबा। तो सबसे पहला नियम, कौन कौन नहीं कहता है या बाद में कहता है 10 मिनट के बाद, वो हाथ खड़े करो। बहुत सारे। पहला संकल्प ही क्या हो, और इसके पीछे और एक सूक्ष्म सिद्धांत है, जिस संकल्प से हम सोते हैं वही सोते समय का अंतिम संकल्प ही सुबह का प्रथम संकल्प होता है। विकारी संकल्प के साथ यदि कोई कुमार सोता है तो उठते ही वह पहला संकल्प होगा, चाहे तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, समर्पित हो, कुछ भी। जो संकल्प से आत्मा सोती है उसी संकल्प से आत्मा उठती है। सोते समय क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उस पर बहुत कुछ आधार है। तो सबसे पहला उठते ही गुड मॉर्निंग करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फ्रेश होना, हो सके तो अमृत वेले स्नान करके ही करना है। वो लोग हाथ उठाओ जो स्नान कर अमृत वेला करते हैं, कम है। स्नान करने के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। हमारे शरीर में हेयर, जो बाल होते हैं, वहां पोर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छेद। अभी पहला पूरा नहीं हुआ है। जैसे हम स्नान करते हैं, ये जो पोर्स है शरीर के वो खुल जाते हैं, तो इससे नींद आने की संभावना कम होती है। तो स्नान करना, और एक उसके पे पहले ब्रश करना। क्यों करना ब्रश जरूरी? यहां जो उसके ब्रशेस स्टिमुलेट करते हैं वो थोड़ा ऊपर भी स्टिमुलेट करते हैं, जो नींद का जो असर है वो थोड़ा कम होता है। उसके बाद अमृत वेला कहां करना है? एक है अपना कमरा, एक है बाबा का कमरा, एक है सेंटर, एक है मधुबन, अगर वहां है तो। कोई लोग मधुबन में रहते हैं परंतु मधुबन में यहां से जाते फिर भी अपने कमरे में ही अमृत वेला करते, वो भी एक कैटेगरी है सेपरेट। तो कहां करना चाहिए अमृत वेला? जहां हम बिस्तर है हमारा, सबसे पहले उस बिस्तर का परित्याग करना पड़ेगा। वो जो बिस्तर है उसमें बहुत ही सघन नींद के घनीभूत वाइब्रेशंस है, बहुत वाइब्रेशंस है उसमें। उस प्रकंपन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। वो जमीन भी हो सकती है फिर चलेगा। वो आसन होता है ना छोटा, अगर कुमार जो है अलग अलग अपने छोटे छोटे कमरों में रहते हैं तो आसन एक खरीद लो, आसन सन्यासी योगी तपस्वियों का आसन होता है, उस आसन में बैठ के, या शतरंजी या छोटा कुछ भी, परंतु बिस्तर पर नहीं। कोई लोग गुप्त योग भी करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो प्रदर्शन ना करे, कोई शो ऑफ, कोई आडंबर नहीं, बिल्कुल गुप्त। यहां तक गुप्त की हृदय भी ऊपर ले लो, बाजू वालों को भी पता ना चले कि हम योग में, पर हम हैं योग में, पर बाजू वाले को भी पता ना चले। ये है महातपस्वी और गुप्त योगी, जो बिल्कुल ये दिखाना नहीं चाहते कि किसी को भी पता ना चले कि हम बाप को याद कर रहे हैं, इतने योगी है। देखो तो स्नान, पहले गुड मॉर्निंग, फिर स्नान, ब्रश, स्नान और अपने बिस्तर का परित्याग, उससे निकल के दूसरी जगह, वहीं जाके नमाज नहीं पढ़ना है अपने बिस्तर पे, वहां से दूसरी जगह, अगर बाबा का कमरा बना है तो वहां जाना है। अगर हो सके तो मधुबन में ट्रांसलाइट मिलता है अभी, छोटा इलेक्ट्रिक वाला, पता है? वो ट्रांसलाइट अगर जिसके पास नहीं है वो खरीद ले, छोटा भी मिलता है बड़ा भी मिलता है। अगर बाबा के लिए कमरा बना सके तो कमरा बनाए, अगर नहीं बना सकते तो बस वैसे ही रख दे, टेबल पर ही रख दे, वो भी चलेगा। ट्रांसलाइट मिलता है वो एक है। फिर है अमृत वेला। अमृत वेला भी कैसा हो, उसमें नींद का जरा भी असर ना हो। साधारण अमृत वेला नहीं करना है, शक्तिशाली अमृत वेला, जिससे आत्मा चार्ज हो जाए, आधा नींद में आधा बाबा से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नींद आ रही है, उसके ऊपर स्वयं ही अध्ययन करना है। क्या ऐसी गलती हो रही है, रात को देर से भोजन कर रहे, ज्यादा भोजन कर रहे, फोन पर बात करते करते सो रहे, क्या ऐसा हो रहा है, या दिन में दिनचर्या ही ऐसी बनी हुई है कि इतना सेवाओं का विस्तार है कि आराम के लिए समय ही नहीं है उसमें। तो क्या हम ऐसी युक्ति रचे कि जिससे वो शक्तिशाली हो, क्योंकि सेवाएं बढ़ रही है, एक एक आत्मा को बहुत सारी सेवाएं करनी है, मल्टीटास्किंग करना होता है, मल्टीटास्किंग, ये भी करना है वो भी करना है, ये प्रोग्राम है वो भी, यहां पे भी जाना है, ये भी करना है वो भी करना है, इतनी सारी 10 चीजें एक साथ करनी है, परंतु ध्यान रखना है कि ये मिस ना हो, चाहे कुछ भी हो। हमको याद है हम जब पहले पहले मधुबन में थे तो इतना नशा था जो कल जो हम सुना रहे थे, एक बार हमको बाहर जाना था कहीं, तो हम ट्रेन में बैठे, पहली बार मधुबन में पहुंचने के बाद कहीं बाहर जाना था ट्रेन से, तो हम रात में सोए। हमारी आदत थी 2 बजे उठने की, तो हम एक बार सोए और सो गए, और सोकर जब उठा, ट्रेन में ही था, देखा एकदम प्रकाश हो गया है बाहर, और हमको लगा हमारा अमृत वेला मिस हो गया। मतलब एक तरफ कहां थे, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, नहीं तो चकनाचूर, ऐसी स्थिति आ गई कि अभी तो मतलब ऐसा लग रहा था ट्रेन में कि अभी मतलब दिन हो गया, इतना प्रकाश था बाहर। तो एकदम जैसे दुखी हो जाता है ना कोई, अपराध भाव और ये इस तरह से जैसे हो गया। तो ऐसे हम बैठे थे बैठे थे, क्या अभी क्यों ऐसा हो गया, सोच रहे थे क्या कारण हो सकता है उसका। परंतु अच्छा हुआ ट्रेन चालू हुई, एक्चुअली वो स्टेशन था उसका वो इतना ज्यादा लाइट था, वो जब हम देखा तो वो उतना ही टाइम था जितना होना चाहिए था और जितने बजे हम उठते हैं। तो अपने बिस्तर का परित्याग करना है, बिस्तर पर अमृत वेला नहीं करना है, उठना है शक्तिशाली पावरफुल अमृत वेला, अर्थात जिसमें नींद का असर ना हो, प्रभाव ना हो थोड़ा भी। अगर है तो फिर दूसरी विधि है, चलते फिरते करो, बैठने की आवश्यकता नहीं है, चलते रहो फिरो यहां से वहां वहां से वहां, चलते चलते इस सोमान का अभ्यास करो। या फिर अमृत वेले से पहले कुछ तो पढ़ के जाना है, जैसे हम खुद करते हैं कि क्योंकि हमें पांडव भवन में रोज क्लास कराना होता है 5:15 से 6 बजे तक, तो जिस पे क्लास कराना होता है सारे दिन भर हमारे पास समय नहीं है उसके बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, हजारों चीजें करने को है, ये भी करना है वो भी करना है, तो वो क्लास की तैयारी केवल अमृत वेले 10 मिनट, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, उसको पढ़ना और फिर जाना, ताकि अमृत वेले में भी वो शायद जैसे वो ही समान बन जाता है और उसी के ऊपर अमृत वेला हो जाता है। इसके लिए जिनको नींद ज्यादा आती है क्या करना है, अव्यक्त वाणी का अध्ययन, या फिर बाबा की आवाज में ही मुरली सुनना, या फिर कोई योग की कमेंट्री सुनना, या फिर कोई शक्तिशाली क्लास है उसको सुनना, कुछ भी करो बाय हुक और क्रुक, साम दाम दंड भेद ये न केन प्रकारेन, जो भी कर सके पर नींद ना आए। जगदीश भाई के पास एक माता आती थी, कहती थी भाई साहब मुझे अमृत वेला ऐसे अनुभव होता है, ऐसे अनुभव होता है कि जहां सूक्ष्म वतन भी नहीं रहता है और परम धाम से भी ऊपर अनुभव होता है, वहां सारे संकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। जगदीश भाई ने कहा ये निद्रा लोक है जो परम धाम से भी ऊपर है। परम धाम तक तो पता है ना 3 लोक, ये 4th लोक है, जब उसके भी ऊपर स्थिति चली जाती है तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल शून्यता, परम शून्यता, वो अवस्था ना है। अमृत वेला हो गया, उसके बाद नेक्स्ट अध्ययन, चिंतन, स्टडी, स्वाध्याय, जो योग करना चाहे एक्स्ट्रा वो कर सकते हैं, या फिर बाबा के कमरे में बैठकर प्लानिंग करना दिनचर्या की, क्या करना है आज, कौन कौन से कार्य है, किस कार्य को कितना महत्व देना है, कौन सा कार्य इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, 2nd, 3rd, 4th, ऐसा ना हो जाए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो सबसे नीचे चला जाए और जो महत्वपूर्ण कार्य था वो रह जाए। इसके लिए दिनचर्या में क्या क्या करना है उसकी थोड़ी प्लानिंग बाबा के ही कमरे में, या फिर बाबा से, 3 चीजें और हैं, एक है बाप से रूरयान, दूसरा है स्वयं से रूरयान, और तीसरा है ज्ञान का मनन चिंतन। ये 3 कार्य रोज होते रहे सारे दिन भर में। कौन कौन सी, सबसे पहले बाबा से बातें करना, बाप से रूरियान, दूसरी स्वयं से रूरियान, ये जो सुबह का पीरियड है अमृत वेले के बाद का स्वयं से बातें करने का समय है, और तीसरा है ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अध्ययन और पढ़ाई। पढ़ाई बहुत बाकी है क्योंकि एडमिशन बहुत लेट ली है और एग्जाम सबकी 7 में है, तो बहुत मुरलियां बाकी है पढ़नी। कब पढ़ोगे, एक पूरी नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, माल आते ही रहता है नया नया, नया आता है पुराना भूल जाता है, ऐसा ना हो। वो हो गया, उसके बाद में है मुरली क्लास। मुरली क्लास में अगर जो लेट आते हैं टीचर के बाद, बाबा कहते हैं वो मेरी इंसल्ट करते हैं, क्या करते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं जो मेरे बाद मुरली क्लास में आते, भगवान आ चुका है परम धाम से और उसके बाद जो आता है ये ईश्वरीय पाठशाला है। इस पाठशाला में यूनिफॉर्म है, संपूर्ण यूनिफॉर्म के साथ हो सके तो 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले ही पहुंच जाना है, डायरी और पेन के साथ। जो समझते हैं कि हम सीधा बुद्धि में लिख सकते हैं उनके लिए ठीक है, सीधा ही, कुछ कुछ हैं आत्माएं जो सीधा ही बुद्धि पर लिखती है। दादी जानकी कहती है ना, मैंने कभी ना यूज नहीं किया है डायरी पेन, सीधा यहां सारा ज्ञान अभी तक दादी की क्लास में आता है। 5 किलो चावल किसने दिए थे, 4 किलो चावल किसने दिए थे, अभी तक याद है, 70 साल पहले की बात है। अगर ऐसी मेधावी बुद्धि है किसी की, उनके लिए वो थोड़े ये है, इसके लिए अपवाद, उनको डायरी पेन की आवश्यकता नहीं। परंतु बाकी सभी जो थोड़े कम मेधावी है, नियम क्या है, डायरी और पेन। अभी कितना मुरली लिखनी है, सारी की सारी लिखनी है कि थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। जिसको नींद बहुत आती है, अनकंट्रोलेबल, सारे उपाय कर लिए, उनके लिए श्रीमत है सारा के सारा लिखो। पर नींद में भी हमने देखा, एक भाई ने हमें अपनी डायरी दिखाई थी, इतनी नींद आ रही थी, गोल 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 एक ही मुरली पर वही गोल 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 गोल, पता ही नहीं क्या लिख लिख तो रहे, आंखें खुली है परंतु आंखें खोल कर नींद। ये नया प्रकार है जो ब्राह्मण जानते हैं, मुरली क्लास में बैठना आंखें खुली है परंतु संपूर्ण नींद का आनंद अंदर। तो जो लिखा वो ऐसे गोल 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 गोल, उर्दू जैसा या तमिल तेलुगु जैसा पूरी मुरली थी, उसे ही पता नहीं, वो कहता था कि ये क्या लिखा मुझे ही पता नहीं। परंतु इसके लिए एक विधि ये भी है, और एक सूक्ष्म दूसरी विधि है कि क्योंकि मुरली सबके पास आ जाती है मोबाइल में, हो सके तो उसको पहले ही पढ़ के जाए। पहले तो ये नहीं कहा जाता था, पर अभी मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा सा पहले ही थोड़ा अध्ययन कर ले उसका, कि ये विषय है, और फिर जब मुरली सुनते हैं तो वो रिविजन हो रहा है, एक्चुअली वो रिविजन क्लास है, और उसमें कुछ चिंतन ऐड हो रहा है। ऐसी 2-3 बातें वहां होगी, एक तो ये, तो मुरली सुनना, टाइम पर आना, यूनिफॉर्म पर आना, योग युक्त स्थिति में सुनना, और एक महत्वपूर्ण चीज, मुरली सुनते हुए भी योग का प्रयोग करना, योग सुनते हुए योग करना। जैसे एक संकल्प है कि बाबा उस तन में आकर मुरली सुना रहा है, मैं इस तन में अभी अभी आई हूं मुरली सुनने के लिए, कितना सुंदर संकल्प है, बाबा उस तन में अभी अभी आके मुरली सुना रहा है, और मैं आत्मा अभी अभी परमधाम से इस तन में आई हूं मुरली सुन रही हूं। तो योग का भी प्रयोग, और दूसरी एक आदत होती है मुरली खत्म और भागे, अभी स्लोगन पूरा ही नहीं हुआ है। मुरली होने के बाद भी जो वो गीत बजता है उसमें सारी ही मुरली एक बार पूरी की पूरी रिवाइज करो, अंदर ही अंदर वो पूरा हुआ, उससे बाहर निकले, बाहर निकलते समय भी क्या क्या मुरली में सुना उसको रिवाइज करते करते सुन जाना। फिर है ब्रेकफास्ट, नाश्ता, जो नाश्ता खुद बनाते हैं उनके ऊपर तो फूलों की वर्षा होती है ऊपर से, ऐसे तपस्वी कुमार यहां पर बहुत है जो स्वयं अपने हाथों से बाबा को भोग लगाकर खाते हैं। इसमें मुझे बताओ भोग लगाने वाले कितने हैं, भोग अर्थात 24 घंटे में पूर्ण विधिवत गीत के साथ सारे बर्तन, भोग का कपड़ा, सब कुछ संपूर्ण विधि के साथ भोग लगाने वाले कितने हैं, एक गीत के साथ, संपूर्ण एक गीत, 3 गीत नहीं, एक गीत। तो बाबा को ऐसो का भोजन बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेष्यति, गीता में लिखा है जो अनन्य भाव से पत्र पुष्प और फल भी मुझे भोग लगाता है वो मैं अनन्य प्रेम से उसे स्वीकार करता हूं। भगवान को तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए, उसे भावना चाहिए। तो जो नहीं भोजन बनाते आज से, उनको भी भोग लगाना है। किसका भोग लगाएंगे, जल का चलेगा, फल का चलेगा, भोजन भले कहीं और से कर रहे हैं, कोई और बना रहा है या सेंटर से कर रहे हैं, फिर भी 24 घंटे में एक बार बैठकर, नीचे बैठकर भोग लगाना है। कौन कौन लगाएंगे, हाथ खड़ा करो। महेश भाई लगाएंगे ना, तो हाथ खड़ा करो सभी को 24 घंटे में एक बार, नाश्ते में नहीं लगाया, दोपहर में नहीं लगाया, रात को, ये बात को मिस नहीं करना है, क्योंकि वो भी फिर आपके योग के पीरियड में गिना जाएगा। वो जो 5 मिनट है वो योग में गिने जाएंगे, और जो भोजन तीनों बार जो कर रहे हो योग युक्त स्थिति में स्वीकार किया जाए, समान में स्थित होकर किया जाए, या फिर बहुत ही धन्यवाद का भाव उसमें हो। भोजन स्वीकार करते समय उस किसान को सबसे पहले प्रकृति को धन्यवाद, उस किसान को धन्यवाद जिसने वो फसल उगाई, वो सारे लोगों को धन्यवाद जहां जिन्होंने अनाज सप्लाई किया, वो सारों ने जिन्होंने भोजन बनाया पकाया और हमको अभी खिला रहे, सबको धन्यवाद, और सबसे ज्यादा शिव बाबा को धन्यवाद। और एक संकल्प है, भोजन करते समय यह संकल्प करो कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन कर रहा हूं, एक एक कौर एक एक निवाला इस संसार की सभी आत्माओं को जा रहा है, मैं भोजन इधर कर रहा हूं पर संसार में न मालूम कितने भूखे हैं, सभी को जा रहा है ये भोजन, केवल ये मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं परंतु विश्व की अनगिनत आत्माओं तक ये भोजन पहुंच रहा है। कल्प वृक्ष के जड़ के नीचे बैठकर भोजन स्वीकार करना ये श्रेष्ठ सम्मान और संकल्प है। बाप की याद में भोजन स्वीकार करना, कभी बाबा ने अव्यक्त संदेश था गुलजार दादी के द्वारा, बहुत पुराना, जिसमें बाबा ने कहा है कि यदि भोजन योग युक्त होकर बनाया जाए और स्वीकार किया जाए तो 50% ब्रह्मचर्य और प्यूरिटी वैसे ही अचीव हो जाएगी, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं, 50% प्यूरिटी स्वतः ही आ जाएगी यदि भोजन योग युक्त होकर स्वीकार करते हैं बनाते हैं। भोजन बनाते समय भी, भोजन बनाने वाले कौन कौन है, रोज बनाने वाले, तो जो जो चीज उसमें डालते हो उस एक एक चीज को भी दृष्टि देनी है। आलू डालते हो उस आलू को दृष्टि, तेल डालते हो उस तेल को दृष्टि, मसाला डालते हो उस मसाले को भी दृष्टि, हर चीज को दृष्टि देते हुए उस भोजन का जो टाइम है उसको योग युक्त करना है। या फिर मुरली सुनते हुए, मोबाइल में सबके पास मुरली है, क्लास सुनते हुए या फिर मेडिटेशन कमेंट्री सुनते हुए या बाबा की आवाज सुनते हुए भोजन बनाया जाए और मौन में बनाया जाए। पूर्व जमाने में जो भोजन बनाते थे उनको कहां का क्या कहा जाता था, महाराज। भोजन बनाने वालों को क्या कहते हैं, महाराज। क्यों महाराज, महाराज अर्थात कर्मेंद्रियों के राजा होते हैं वो जहां भोजन बनाते थे कोई दूसरा उसके अंदर आ नहीं सकता, उनके जो वस्त्र थे उसमें कहीं पर भी सिलाई नहीं होती थी, महाराज जो होता है ना कहीं पर भी सिलाई नहीं है, नोबडी इज अलाउड, अंदर कोई नहीं आ सकता है, इतनी भोजन की शुद्धता और पवित्रता का महत्व है। इसके लिए जिस विधि से हम बना रहे हैं वो भी शुद्ध हो, और दादी जानकी कहते हैं ना कि अगर किसी की स्थिति देखनी है कैसी है गृहस्थियों की तो उनके किचन को जाके देखो कि किचन कितना स्वच्छ है, ऐसा नहीं कि भोजन बनाए और बर्तन ऐसे ही रखे हुए। कहते हैं अगर रात को भोजन बनाए और बर्तन वैसे ही छोड़ दिए तो वो बर्तन रोते हैं, उनकी सफाई हो, स्वच्छ हो, कितना शुद्धता है, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस कितनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आए तो उसे बिल्कुल कुछ भी ना दिखाई, ऐसा पता ही नहीं चले कि यहां भोजन बना था, अगर थोड़े देर में कोई आ जाए तो उसको यह भी ना पता चले कि यहां भोजन बना था, इतना वो स्वच्छ हो भोजन बनाने के बाद। तो नाश्ता, उसके बाद है कर्मयोग। अभी कर्मयोग का जो पीरियड है 9 से 5, सारी माया यहीं पर है, यह है हमारा लाइव टेलीकास्ट, ये तो बाकी का जो है सुबह और शाम ये है बैकग्राउंड, ये तो कुछ नहीं, सारा जो है यहां है, अब सारी माया और सारी कसरत यहां है। सुबह कहां से, हम बहुत कम आती है माया, तो सुबह 9 बजे तक बहुत कम, कोई 6-5 बजे तक है उसके बाद कम, माया जो है वो ये पीरियड है, लाइव टेलीकास्ट यहां होता है, यहां हमको एक्टिंग करनी है, एक्ट करना है, मेन ड्रामा तो यहां है। ये जो पीरियड है हमारा, इसमें क्या हम करें कि जिससे हमारी स्थिति योग युक्त हो, इसमें फिर बहुत सारी श्रीमत भी आ जाएंगी, किसी को दुख नहीं देना है, बोलना कैसा है, बात कैसा करना है, वो सारी बातें यहां आ जाएगी, रेस्ट कितना करना है, और कर्म के हमारे जो ट्रैफिक कंट्रोल बना हुआ है, किसी का ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम फ्री नहीं रहते, किसी का बुद्धि का काम है, किसी का कभी कभी बुद्धि का काम है और ज्यादा से ज्यादा कम बुद्धि का काम है, जो स्वतः ही यांत्रिक होते रहते हैं, उस समय भी हम समान का अभ्यास करें, इसके लिए सामान हमको मुरली से ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए और एक महत्वपूर्ण कार्य जो रोज की मुरली से लेना, एक है मुरली और फिर होता है वरदान। वरदान का ऊपर का महावाक्य तो याद नहीं रहता है, परंतु अंदर का जो विश्लेषण है उसको याद रखना है। हो सके तो उसको वहां से कट पेस्ट करके व्हाट्सएप में पेस्ट करो, थोड़ा सजाकर। वरदान को वहां से निकालकर पेस्ट करना है व्हाट्सएप में किसी अननोन नंबर या अपने ही किसी और नंबर में लगा के, ताकि वो एक अलग से ग्रुप हो जिसका नाम हो खाली वरदान, अपने लिए। उसमें कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, कोई हमारा अपना मृत नंबर होगा, कोई मृत डेड नंबर जो होगा ना, तो वो उस नंबर पे भेज दो और रोज भेजते रहो, जो किसी को ना जाए, केवल हमारे लिए, क्योंकि हम उसको विभाजित कर रहे हैं अच्छे से उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि हमको मास्टरी करनी है वरदान पर। तो वरदान और स्लोगन दिन भर में भी बीच बीच में उनको याद करने का प्रयत्न करना है। कर्म तो करना ही है, सेवा तो करनी ही है। किसी किसी की सेवा ऐसी है कि उसका कोई टाइमिंग नहीं है। जैसे हम अपना ही बताते हैं कि हमारी सेवा ऐसी है कि 24 ही घंटे इमरजेंसी है। हमको याद है मधुबन में हम 3 बजे बैठे, इमरजेंसी आई, 3 बजे आईसीयू गए, पेशेंट को देखा, वेंटिलेटर पे डाला, सारी प्रोसीजर किए, 3:30 बजे फिर मधुबन, वो करके इधर। ऐसा एक भी रात नहीं है जिस दिन कोई उधर से कॉल नहीं आया कि पेशेंट नहीं आया। कुछ ना कुछ किसी को कुछ ना कुछ होते ही रहता है, परंतु हमने लक्ष्य रखा है वो अपने तरफ रहेगा, हमारी साधना अपनी तरफ रहेगी। तो किसी किसी की दिनचर्या ऐसी है कि उसमें इमरजेंसी से, पर मुझे नहीं लगता ऐसा सभी का है। हर एक की ड्यूटी बहुत यहां तो फिक्स है 9 से 5, 9 से 6, उतना होने के बाद में उससे निवृत्त हो जाना है। वो अभी एक तरफ 9 से 9 भी है किसी किसी की, किसी किसी का ट्रैवलिंग में कितना समय जाता है, उस ट्रैवलिंग के समय में को कैसे सफल करे। हमको याद है जब हम मुंबई में थे और जब बीएसईएस हॉस्पिटल में पढ़ रहे थे, कल हमने जैसे बताया कि हमारे अंदर ऐसी इच्छा थी कि हम सब कुछ ही सीख ले। अब कैसे सीखे, टाइमिंग इतने थे, इतना मुश्किल थे सारे टाइमिंग। हमको एक कोर्स करना था, इको का कोर्स करना था। अभी इको का कोर्स करना कहीं और, वो हम रहते थे अंधेरी, और वो 2 ट्रेन का चेंज करके उधर जाओ, उसमें भी टाइमिंग, और वो जो सुबह की ट्रेन होती थी इतनी भीड़ रहती थी उन ट्रेनों में, 2-3 तो छोड़ देना पड़ता था। पर ये जो एक पीरियड था ट्रैवलिंग का, हमने शिवानी बहन को जो सुना, वो तो 2 मास में उन्होंने जो कुछ जितना कहा होगा उस 2 मास में उस समय सुना, वो ही हमको लगा अब क्या करे, कैसे सफल करे इस समय को, क्योंकि नहीं तो वेस्ट ही हो जा रहा है वो समय, केवल ट्रैवलिंग कर रहे। तो ट्रैवलिंग का जो समय है कहीं पर भी जा रहे, वो हमारा केवल ऐसे ही ना चला जाए, कुछ ना कुछ उसमें हम सुनते रहे, कुछ सोचते रहे, क्रिएटिव करे, योग युक्त हो, तो वो भी एक श्रीमत है। ठीक है, फिर आते हैं कर्म में ट्रैफिक कंट्रोल। अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करो, जरूरी नहीं है कि 10:30 बजे है तो, वो तो है, परंतु अगर आप उस समय बिजी है, जैसे हम लोगों का होता है, हम लोग बिजी हो जाते हैं कभी कभी 10:30 या 12 बजे, तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करो, वरना ये ट्रैफिक कंट्रोल है उसको करना है। और जो बाबा ने अभी तो 1-1 घंटे में बचता है, मधुबन में तो बचता है, हम लोग जहां ड्यूटी करते हैं शायद वहां ना बचता, और ऐसा भी हो सकता है हम जिन लोगों के साथ कार्य करते हैं वो सब अज्ञानी है, जिन लोगों के साथ कार्य करते हैं वो निंदा करने वाले हैं, नाम रख कुछ कुछ बोलने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। वहां हम कट्टरवादी ना बने, फैनेटिक ना बन जाए, फैनेटिक होता है ना बस मैं ही राइट हूं, उनकी अपनी धारणाएं हैं, उनके साथ भी चलना है, उनको वो करने दो, हम ये कर रहे हैं। जैसे कोई सिख व्यक्ति है वो पगड़ी वगैरह पहनता है, उसको कोई कहता थोड़ी ना है, पर अगर कहे भी तो उसको बुरा क्यों लगेगा, वो हिंदू है, हम ये है, बस हमारे ये जीवन है, उनको ये जीवन स्वीकार नहीं है, तो उनके साथ में डिटैच भाव परंतु शुभ भावनाएं रखनी है। तो हमारा जो कर्म का पीरियड है उसके लिए मर्यादा यही है कि जितना हो सके अंतर्मुखता में रहे, जितना हो सके बीच में ज्ञान का स्मरण करे, रूहानी ड्रिल करे, और सबसे महत्वपूर्ण है आत्मिक दृष्टि। जो भी दिखाई दे रहे हैं हमें, स्त्री पुरुष, वो सब आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम किसी को आत्मा देखते हो तो उसको करंट देते हो। तो हमारा कार्य क्षेत्र जो है वहां सबसे ज्यादा माया आती है। वहां कोई हमारा बॉस होगा, कोई हमारे जूनियर्स होंगे, कभी हमको ऑर्डर देना पड़ेगा, कभी ऑर्डर स्वीकार करना पड़ेगा। आज की मुरली पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 2, यहां से जाकर फिर से पढ़ लेना, कार्य में क्या किया जाए उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है। अगर कोई कहता है, अगर तुम समझते हो मैं ही रॉन्ग हूं क्या, ये लोग भी तो रॉन्ग है, हम समझते हम ही राइट है, तो बाबा ने कहा लोक संग्रह अर्थ तुम्हें स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि गलती हुई और स्वीकार करना, इसमें महानता नहीं है। गलती नहीं हुई है परंतु लोक संग्रह अर्थ कर रहे हो तो ये झुकना नहीं है, ये ऊंचा उठना है। बहुत सुंदर पैराग्राफ आज की मुरली में है। तो कार्यक्षेत्र शाम का, नुमा शाम का योग कौन कौन करते हाथ खड़ा करो, बाकी उस समय क्या करते हैं वो बैठ जाओ अभी हाथ नीचे, बाकी जो योग नहीं करते योग के अतिरिक्त क्या करते हैं, ऑफिस वाले छोड़कर, जिनके पास ऑफिस नहीं है वो क्या करते हैं शाम में, सेवा। टाइम वेस्ट कौन कौन करता है, क्या वेस्ट करते हो टाइम? हाँ ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। उस टाइम को कहां वेस्ट हो रहा है सबसे पहले उसका प्लानिंग बनाना है। हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है, सबसे पहले कुछ साहित्य एकत्र करना पड़ेगा, मुरलियों को इकट्ठा करना पड़ेगा कि ये हमको, तभी तो हम प्लानिंग बनाए कि ये करना बाकी है, ये होना चाहिए, उसके बाद तो टाइम कहीं हमारा वेस्ट ना हो। फिर नुमा शाम का योग जो हम कह रहे थे, सेंटर जाना जो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं तो अपने ही कमरे को सेंटर जैसा वातावरण वहां निर्माण करना, जो हमारा कमरा है उसके भी वाइब्रेशंस पावरफुल हो। कोई अगर आ जाए तो जादू लग जाए। आज की मुरली पार्टियों से मुलाकात पार्टी नंबर 2, अगर कोई दूसरा आता है तो उसको लगे हम फरिश्ते से मिल रहे हैं, अगर कोई दूसरा बाहर का आ जाता है तो उसको लगे यहां जैसे कि जादू लगा हुआ है, ऐसा उनको अनुभव हो। तो हमारे कमरे में भी अगर कोई आ जाए, अगर कोई हम कहीं और रहते हैं जैसे घर में रहते हैं गृहस्थ में रहते हैं तो वहां भी हमारा जो कमरा होगा, अगर नहीं है तो हमारा जो संपूर्ण घर होगा उस संपूर्ण घर के वाइब्रेशंस जो है वो शुद्ध हो, कोई भी वहां आ जाए उसको दिव्य अनुभूति हो। ऐसा हम क्या करें, जरूर कोई विकारी संकल्प हमारे है तभी ये वातावरण शक्तिशाली नहीं हो रहा है, नहीं तो हमारे अगर संकल्प शक्तिशाली है तो वो वातावरण स्वतः ही शक्तिशाली होगा। इसके लिए अपने कमरे के वाइब्रेशंस, अपने कमरे में हमने कौन से पोस्टर लगा रखे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें बीच बीच में स्लोगन कौन से लगा रखे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, उसमें लगा के रखना है। हो सके तो बाबा का कमरा बना, जो सकते हैं वो बनाए, नहीं बना सकते तो वो ट्रांसलेट जो कहा है वो। फिर रात का भोजन, वो भी रात का जो है वो जितना हो सके टाइम से थोड़ा कम और सोने से कुछ देर पहले, ताकि अमृत वेले नींद ना आए। शाम को और एक चीज करनी है, वो है बाप को जो सेवा हुई है उसके बारे में एक रिपोर्टिंग करनी है। दो बार चार्ट देना है बाबा को, एक शाम को और एक रात को। रात का चार्ट देना, पोता मेल देना एक दूसरी श्रीमत है। शाम को जो सेवा हो गई, अभी ड्यूटी कर ली 6 बजे तक, 6 बजे तक फ्रेश हुए, उसके बाद में भी ड्यूटी में क्या क्या हुआ वो भी एक रिपोर्टिंग कि ये हुआ, ये मन ही मन नहीं बैठ के बताओ तो अच्छा है, मन ही मन भी अच्छा है, परंतु जो योग करते हो नुमा शाम का उसके पहले 5-10 मिनट स्वयं को हल्का करो, क्योंकि सारी हलचल वाली चीजें दिन में होती है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, माया इस तरह से आई उस तरह से आई, स्वयं को हल्का करना। और फिर रात में डायरी कौन कौन लिखता है अब ये बताओ, बहुत कम। इसमें जो डायरी नहीं लिखते अभी उनके लिए कह रहा हूं, चार्ट लिखना बड़ा मुश्किल कार्य है। जो हम करते हैं वो हम बता रहे हैं कि हम अपनी सारी की सारी दिनचर्या लिखते हैं, उसमें चार्ट की जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड करते हैं, कभी कभी चार्ट भी अलग से, परंतु दिनचर्या जो है कि सुबह कितने बजे उठे और क्या किया और कोई विशेष घटना हुई, दिनचर्या लिखना। हमने देखा है कि जो भी संसार में महान व्यक्ति हुए हैं वो सभी को डायरी लिखने की आदत थी, अपनी डायरी लिखना, उसमें दिनचर्या लिखना। उस दिनचर्या में फिर धीरे धीरे सीधा चार्ट अगर लिखने जाओ तो रेडीमेड चार्ट मिलते हैं, मधुबन से चार्ट आते हैं, दिव्य दर्पण के चार्ट आते हैं, वो 10 दिन लिखते हैं फिर छूटता है, 1 मास लिखते हैं फिर छूटता है, कुछ दिन लिखा फिर छूटा। आदत जो चालू करो डायरी लिखने की, अर्थात दिनचर्या लिखना चालू करो उसमें, उसमें फिर धीरे धीरे इंक्लूड करो मुरली का कोई शक्तिशाली पॉइंट, वो भी उसमें डाल दो कि आज इस विषय पर हमने चर्चा की। जैसे भाई ने बताया, मैं असंभव को संभव करने वाली आत्मा हूं, कितना अच्छा पॉइंट है। तो हम डायरी में लिखने कि आज मेरे मन में यह संकल्प आया, असंभव को संभव करने वाली आत्मा, वो उसमें लिखा। ये जो डायरी लिखना है इसको धीरे धीरे फिर उसमें परिवर्तन करना है चार्ट में, और फिर रात को थोड़ा सा योग करके, थोड़ा सा कुछ अच्छा पढ़ के फिर सोना है। ये तो हमने आपको बताया मर्यादाएं, जो कि सारी पॉजिटिव थी, जो करना है। कुछ मर्यादाएं हमारे पास 5 मिनट और है, क्या क्या नहीं करना है एज अ रूल वो बताओ। अब पैसों की लेन देन, ईश्वरीय परिवार में पैसों की बहुत ज्यादा लेन देन बिल्कुल नहीं करनी है। एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया था सेंटर के एक भाई ने, किसी दूसरे भाई ने उससे 5,000 रुपए लिए और जिसने लिए वो बाद में भूल गया। अभी रोज सेंटर पर साथ में आते हैं, मुरली में उसके सामने ही बैठता है वो, जैसे ही वो सामने आता है जिसने पैसे दिए थे उसको बस वो पैसे ही याद आते हैं, इसने पैसे अब तक दिए नहीं, इसने पैसे दिए नहीं, और जिसने दिए वो भूल गया। अब क्या करे, कैसी समस्या है। वो भाई ने अनुभव सुनाया था, जब मधुबन में आया तो फिर जिसने पैसे दिए थे थोड़ा बाबा से कहा कि भाई वो पैसे अभी मैं भूलता हूं, छोड़ो, अब नहीं चाहिए मुझे पैसे, अगर देना भी है तो फिर इस भाव से दो, अभी मुझे वापस नहीं चाहिए। दे दिया, वो हो गया दान पूरा हुआ। अगर हमने दिए और उसने वापस ना दिए इस ईश्वरीय परिवार में, तो भी संकल्प चलते हैं, अगर देना है तो दे दो और बस। फिर तो वो भाई ने वहां बाबा के कमरे में बैठा, 3 मास से परेशान हूं, क्या करूं। तो उसने कहा कि अब ये पैसे मैं भूल जाता हूं। और फिर जैसे घर पहुंचा वो भाई खुद उसको पैसे देने आ गया। वो कहते मैं कब से तुमको फोन कर रहा हूं, तुम्हारा मोबाइल ही स्विच ऑफ था, वो तो इधर योग भट्टी में आया था ना तो मोबाइल ऑफ था, बोला जब से तो वो तो दे दिए फिर उसने। पर पैसों की जो लेन देन है नहीं करनी है। हां, यदि आवश्यकता है तो हम ले, परंतु देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एक तो ये चीज नहीं करनी है, दूसरा बहनों से रिस्पेक्ट देना, चाहे कोई भी बहन हो। कुछ दिन पहले मुरली चली थी, पिछले संडे, अगर 2 साल की भी है तो टीचर दीदी दादी बन जाती है, 10 साल वाला भी, परंतु ये सम्मान उन्हें किसने दिया है। नहीं तो हम सोचेंगे ये आज की बालकी हमको सिखा रही है, अरे वो तो खाली मुरली पढ़ रही है, पर मुरली है किसकी। हम ये क्यों देख रहे कौन सा व्यक्ति सुना रहा है, हम उस व्यक्ति को ना देखे, ये महावाक्य किसके है। संगम पर बाबा ने बहनों को आगे रखा है। विवेकानंद ने अपने एक अमेरिका के स्पीच में कहा है, एक भविष्यवाणी की है, Volume No. 6, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। उनकी मृत्यु 1902 में हुई है। उन्होंने लिखा है, एक समय आएगा भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और परमात्म संदेश सारे विश्व में फैलाएगी। बड़ी भविष्यवाणी है। बाबा तो 36 में आए, तो भगवान ने ज्ञान का कलश माताओं और बहनों के सर पे दिया है। वो दूसरी बात है कि कलश से माल हमने निकाल लिया है तो रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सम्मान, और सामना माया से करना है, ब्राह्मण परिवार से नहीं करना है। और बोल की भी श्रीमत है, किसी का अपमान करना, किसी को गिराना, किसी को जख्म करना, व्यंगबान छोड़ना, जिसकी स्थिति डाउन है उसको और ही डाउन करना, टॉन्ट करना, कमेंट्स करना, हाँ ये सारी धूतीपना जिसको बाबा कहते हैं, ये सारी चुगली। हाँ, दूसरी और एक बात, इधर की बात उधर, तुम्हें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है। ये बहन इधर थी अब वहां क्यों गई, अब वो बहन वहां थी यहां क्यों आई, व्हाट इज दैट टू यू। बाइबल में जीसस क्राइस्ट का दिखाया है, जब वो पुनः फिर से आता है रिजरेक्शन, अपने शिष्यों से मिलने, सूली पे चढ़ाने के 3 दिन के बाद जब अपने शिष्यों से मिलने आता है, तो एक शिष्य उसको पूछता है कि लॉर्ड हाउ मच डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, 3 बार पूछता है। वो उसको कहता है यस आई डू लव यू, यस आई डू लव यू। ये वही शिष्य रहता था जिसने उसमें थोड़ा सा धोखा दिया था बीच में, वो मुख्य धोखा वाला नहीं, दूसरा। और फिर ये शिष्य जीसस क्राइस्ट से पूछता है, वो जो दूर दिख रहा है जॉन, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा उससे कितना प्यार है? जीसस क्राइस्ट कहता है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, वो मेरा और उसका संबंध है, तुम अपना देखो, मैंने कह दिया ना मेरा तुमसे प्यार है, बस अब तुम अपना देखो, व्हाट इज दैट टू यू, अर्थात कहां क्या हो रहा है, तुम्हें उससे क्या तामझाम, ताक झाक, इससे हमें कोई संबंध नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है इस विश्वविद्यालय में, आना है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है और सेवा करनी है, बस बाकी चीजों में हमें नहीं जाना है। ये महत्वपूर्ण श्रीमत है। और हाँ, मान ऐसा ना सोचो कि हमारी महिमा हो जाए, बहन जी हमारी महिमा की, हमने इतनी सेवा की और हमको चाय भी नहीं पूछी, हमको भोजन भी नहीं पूछा, निस्वार्थ अपनी सेवाओं को निष्काम करते चलो। हमें मनुष्यों के मान का क्या करना है, मान हमें दे कौन रहा है? अरे हमें अगर किसी ने मान दिया भी नहीं, चलो हमने दिन रात सेवा की, सेवा में सफलता हुई, और जब सेवा का समाचार सुनाया गया तो हमारा नाम ही नहीं है उसमें, हमारा जमा नहीं हो रहा है। हम सेवा किस लिए कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं, जो नाम के लिए सेवा कर रहे हैं उनको अल्पकाल की प्राप्ति होगी, परंतु हमारा नाम हो या ना हो पर जमा तो हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? सेवा की और जमा न हुआ, ईश्वरीय गवर्नमेंट में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। और जो एक बात थी, गुप्त भाष्य, गुह्य भाष्य, ब्रह्मचर्य के 8 विच्छेद, उसमें चौथे नंबर का जो था गुह्य भाष्य, 5वां नंबर का, वह नहीं करना है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, जिसको बाबा कहते हैं टू मच फैमिलियरिटी, हमारे जो संबंध हो वो ईश्वरीय संबंध हो, उसमें नए नए संबंध बनाना वो बहुत बड़ी माया है, कोई और संबंध नहीं। एक भाई है और एक बहन है, बस यही एकमात्र संबंध है, या फिर भाई भाई है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ करने गए, कल की मुरली जैसे मकड़ी जाल बुनती है और फंसती है, प्रपंच है ये देह के, काका मामा चाचा ये सब प्रपंच है, जो संसार में प्रपंच उत्पन्न होता है ईश्वरीय परिवार में भी वो सारा ही उत्पन्न हो सकता है, जो वहां संभावना है वो सारी संभावना यहां है, देह वही है क्योंकि आकर्षण वही है, इसके लिए टू मच फैमिलियरिटी में नहीं जाना है। कोड ऑफ कंडक्ट लाइन के अंदर, श्रीमत अर्थात लकीर के अंडर रहने वाले। 1 बज गया है बहन जी, पूरा करें क्या? मर्यादा खंड और कहां होती है मर्यादा खंड? कुछ गहरी बातें और बताओ। ग्रुप बाजी, गुट बाजी, एक ग्रुप बनाना, ये बहुत ही सीरियस बात है। या फिर कमेंट्स करना बहनों के बारे में, यहां तक कि हमने एक बहुत ही जिसको कहेंगे ऐसी एक बात देखी थी, हम किसी एक सेंटर पर गए थे, बहनों के बारे में बातें है ये, वहां की जो बहन जी थी वो, उसको बिल्ली बहुत अच्छी लगती थी, बिल्लियां, तो जब बड़ी बहन जी कभी बाहर गई थी, ये बहनों के लिए बातें हैं, जो बड़ी बहन जी जब बाहर गई थी तो छोटी बहन मुरली सुना रही थी, मुरली में पॉइंट आया था कि तुम्हें किसी से मोह नहीं रखना है, नष्ट मोह बनना है, तो छोटी बहन ने मुरली सुनाते समय कहा, नहीं तो देखो हमारी बड़ी बहन जी को, ये केवल बहनों की बात नहीं है, भाइयों के लिए भी है। हमें बाबा ने कहा है, जैसे आपने दादी का संदेश कितना ध्यान से सुना मुझे पता नहीं, उसमें एक बात जो कल हमने यहां सुना है इस कुमार ग्रुप के लिए, पर दोष पर निंदा, कुमार अर्थात जिनकी वृत्ति दृष्टि श्रेष्ठ हो, यदि हम ही उनके दोष देखने लग जाए तो हम में और दुनिया वालों में क्या भेद? इसके लिए हमें अपनी जो दृष्टि है और वृत्ति है सभी के प्रति और मुख्यतः बहनों के प्रति श्रेष्ठ रखनी है। अगर आप देखें तो उनके जीवन में कितना त्याग समाया हुआ है, इस संसार के आकर्षण में रहते हुए भी वो सारा कुछ त्याग करके स्वयं को ब्रह्मा कुमारी बनाना और परमात्मा यज्ञ में समर्पित हो जाना, नहीं तो देखो हॉलीवुड और बॉलीवुड की हीरोइन क्या कर रही है, कहां वो नर्क और कहां यह जीवन। हजारों माताओं के बीच में अगर एक ब्रह्मा कुमारी खड़ी है तो हम दूर से पहचान सकते हैं कि यह बहन जी है, पहचान सकते हैं कि नहीं? माताएं अलग ही दिखती है, बहनें अलग दिखती है। माताओं और बहनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहनों का जीवन समर्पित जीवन है, उनके प्रति हमारी दृष्टि में दोष बुद्धि ना हो, श्रेष्ठ भावना से उन्हें देखना है। उन्होंने जो कुछ भी वो कह रहे हैं यही समझो कि बाबा करा रहे। दिखेगा कि वो गलत भी है, परंतु रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाप है। इसके लिए निंदा करना, कमेंट्स करना, ये सब चीजें हमें अध्यात्मक, हमारी आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि इससे हमारी उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें निगेटिव भाव है, घृणा का भाव है। तो कई सेंटर पर हमने ऐसा भी देखा है कि कुमार ग्रुप बना के है और बहनों के विरोध में है, या फिर किसी एक बहन से ज्यादा अटैचमेंट है। अगर वो है तो मुरली में जाएंगे, वो अगर बाहर गई है तो मुरली जाना बंद। ऐसा भी है, बहुत कुछ है। इस यज्ञ में भी बहुत बड़ा प्रपंच है। बाबा ने तो यहां तक कहा है कि ये यज्ञ भी हिलेगा एक दिन। इसके लिए हम यहां आए किस लिए थे? ये करने आए थे या ये करने आए थे? तपस्वी बनने आए थे, योगी बनने आए थे, परमात्मा मिलन के सुख का अनुभव करने आए थे, और ये क्या कर रहे हैं? दूसरी एक बात, अगर किसी को किसी भी चीज की मदद की आवश्यकता है स्थूल, तो वो तुरंत करना है स्थूल मदद। यदि किसी बहन को या भाई को शारीरिक कोई बीमारी है तो हॉस्पिटल ले जाना, दवाइयां और बाकी जो भी सहायता हम कर सकते हैं वो सहर्ष सहृदय से करें, उसमें भी भाग्य है। जहां पर भी सेवा का अवसर है, नहीं तो हमारे पास जो भी पैसे है वैसे भी व्यर्थ जाने वाले हैं। हमारा पैसा जो है वो ईश्वरीय यज्ञ में रखे लगे, और देते समय ये भावना ना हो कि हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। हम किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, यहां ईश्वरीय संस्था है, ईश्वरीय यज्ञ में ये जा रहा है। हमने एक जगह एक कुमार का अनुभव सुना था कि उस कुमार ने सेंटर पर एक टेप रिकॉर्डर दिया और फिर वो बहन से झगड़ा हो गया, परंतु क्लास में तो आना चालू था, पर एक दिन कहा कहीं और प्रोग्राम है, वो टेप रिकॉर्ड चाहिए थोड़ा, और लेके गया और वापस दिया ही नहीं। क्या ये दान है? महादान। जो चीज हमने दे दी उसका फिर क्या हुआ, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये दान नहीं है। हमने दे दिया बस, अब हमको कुछ पता नहीं उसका क्या हुआ। दे दिया, अच्छा वो दिया था उसका क्या हुआ? आपने दे दिया ना, आपका भाग्य बन गया। अगर उन्होंने किसी ने ठीक से उसका प्रयोग नहीं किया तो वो उसका विकर्म बनेगा, वो छोड़ दो, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, व्हाट इज दैट टू यू। हमारा लक्ष्य है, हमारा जो धन है, हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाए। और दूसरा और एक महत्वपूर्ण बात है कमेंट्स, वो भी प्यूरिटी के विषय में। किसी के ऊपर कमेंट करना, टॉन्ट करना कि इसका इसके साथ कुछ चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कमेंट, इस तरह की जो कमेंट्स होती है ना, इसका इसके साथ में कुछ है, तुम्हें क्या पता किसका किसके साथ में क्या है। क्या हम दूर से कोई अगर बात कर रहे बैठ के तो हम ये कह सकते हैं इनका कुछ चल रहा है? हमें क्या पता? पति पत्नी सारा जीवन एक साथ रहते फिर भी एक दूसरे को नहीं जान पाते, तो हम जो दूसरे आसपास जो सेंटर वाले उनको कहां से जान पाएंगे? हमें अपने आप को बिजी स्वयं में रखना है, ना कि दूसरों पर कमेंट करने में। और मुख्यतः इस तरह की जो कमेंट है, हमने यह भी कई कुमारों को कहते हुए सुना है कि इस बहन का उस भाई के साथ कुछ चल रहा है, तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या पता है क्या चलना है चल रहा है? इस तरह की कोई भी बातें हमारे मुख से न निकले, ये भी एक बहुत बड़ी श्रीमत है। अलिखित इटिकेट्स जिसको कहते हैं, कहीं लिखा नहीं है, ये जो बातें हम यहां बता रहे हैं इसमें बहुत सारी बातें कई ऐसी कई जगह पर लिखी नहीं है, परंतु अनुभव के आधार से हमारा जीवन आदर्श जीवन हो। और इस सेशन का अंत मैं एक कहानी से कर रहा हूं, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी है द लास्ट पोएम, उर्दू में ये कहानी लिखी हुई है, पोएम नहीं है, कहानी का शीर्षक है द लास्ट पोएम। उसमें दिखाया है एक स्त्री है, बहुत अमीर है, उसे प्रेम हुआ है एक पुरुष से जो कि बहुत गरीब है, उसका भी उससे बहुत प्यार है, दोनों ही शादी करना चाहते हैं, परंतु वो स्त्री एक शर्त रखती है शादी की। वो शर्त ऐसी रखती है कि शादी के बाद हम साथ में नहीं रहेंगे, तुम उधर रहोगे मैं इधर रहूंगी, बीच में एक तालाब होगा, झील, अगर कभी हम मिले तो मिल लेंगे, कभी बोट राइडिंग करते हुए या दिन भर में, ये उसकी शर्त है। क्यों रखी शर्त? क्योंकि ज्यादा अगर किससे मिलते हैं, टू मच फैमिलियरिटी होती है तो एक दूसरे के प्रति सम्मान कम होता है, बहुत ज्यादा जानने लगते हैं ना, इसके लिए सम्मान कम होता है। इसके लिए क्या कहती है, हम रहेंगे साथ में नहीं, शादी पर मैं तुमसे ही करूंगी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगी और तुम्हारी याद में रहूंगी, ऐसी संकट वाली स्थिति कि तुमसे ही करनी है। तो उसमें मतलब भाव यही बताया है कि अगर हम रहते भी है तो ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के साथ रहे जैसे वो उधर और हम इधर, अगर मिलना है तो कभी चलते चलते मिल गए, मिल लिए, बातें की और गुड बाय, बोटिंग कर रहे हैं मिले और गुड बाय और चल दिए। फैमिलियरिटी जहां आ जाती है संबंधों में बहुत ज्यादा, तो फिर एक दूसरे को रूठना, नाराज होना, फिर मनाना, इसी में समय जाता है। स्त्री और पुरुष ज्यादा घनिष्ठ मित्रता जहां होगी, फिर वहां पे नाराज होना चालू होगा, फिर रूठना चालू होगा, फिर वो उसको मनाएगा, वो उसको मनाएगा, और ईश्वरीय जीवन में ज्ञान योग कब करेंगे अगर ये बातें आ गई तो। तो जितना हम बता सके ये ईश्वरीय मर्यादा और जितनी हमें समझ में आई है हमने आपको बताई, इससे अधिक और बहुत कुछ होगा। इस सत्र के अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमने कोई ऐसी बात कह दी होगी कि जिसके वजह से किसी का हृदय विदीर्ण हो गया है तो उसके लिए तहे दिल से हम माफी मांगते हैं। ओम शांति।